9058487000. फातिमा ग्रॉसर्स, सबसे जबरदस्त।
कुछ पल इंसान की जिंदगी में पहली बार आते हैं, इसीलिए आप सिर्फ उन लम्हों को जिए, बाकी हम पर छोड़ दें। 20 साल का वसीत तजर्बा लिए हम हैं वुडबाइन बैंक्वेट एंड कन्वेंशनल हॉल, शानदार इंटीरियर, लार्ज हॉल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट रूम्स और एक्सपर्ट शेफ्स का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। बनाए आपके हर लम्हे को हमेशा यादगार। वुडबाइन बैंक्वेट हॉल, 30 Y Regent बुलेवार्ड, टोरंटो। बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए अभी कॉल करें 416-743-0003।
जी सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ो आवाज़। जैसे कि हमने कहा कि हम PSL की लेटेस्ट जो इन एंड आउट है वो डॉक्टर अदनान के साथ प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, और ये जो सेगमेंट है ये हमारे लिए जसमीत परमार ने हमें इसको स्पॉन्सर किया है। जसमीत परमार हमेशा की तरह हमारे साथ शामिल होती हैं, फ्राइडे को अपडेट देती हैं क्या चल रहा है, अगर आपने कमर्शियल या रेजिडेंशियल मॉर्गेज लेनी है तो उससे रिलेटेड आपके जो है आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉक लेकर आती हैं। छोटा सा इनका ये इंटरव्यू है, तो सबसे पहले खुशामदीद कहती हूँ जैस्मीन जी, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। रेडी फॉर द वीकेंड?
रेडी फॉर द वीकेंड जी जी। होपफुली ये वीकेंड थोड़ा कम ठंड वाला वीकेंड होगा।
हाँ, इट्स लाइक
गुड वेदर,
बिल्कुल स्प्रिंग आ गई है। और भाई 10 टेम्परेचर संडे को, मतलब फरवरी में 10 टेम्परेचर, इट्स बहुत अनयूजुअल है। और अर्ली स्प्रिंग सी फीलिंग शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है वो जो ग्राउंड हॉक था वो सही कह रहा था कि आफ्टर 6 weeks देयर इज स्प्रिंग।
या एग्जैक्टली, बट इस बार तो फरवरी जो है वाज मच कोल्डर देन जनवरी।
सो ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो व्हाट अबाउट, ये तो मौसम का हाल था, मॉर्गेज की दुनिया में क्या चल रहा है?
हाँ जी जरूर। तो सर जी, जैसे आपने बताया, अब डेफिनेटली जैसे मैं आज यू नो मंडे के बाद अब मैं आज अपने सारे यू नो लिसनर्स से बात करूंगी, तो आपने सुना होगा और कहा, बहुत सारे हमारे लिसनर्स ने भी सुना होगा, क्योंकि हमसे क्लाइंट्स जो है कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि क्या मॉर्गेज के रूल्स जो है वो यू नो ईजी हुए हैं, लूजन अप हुए हैं, उन्होंने बेंच मार्केट में कुछ इम्प्रोवाइजेशन करी है। तो मैं आपको बता दूँ कि येस, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है यू नो, और अभी जो हमारी जो मॉर्गेज की उनकी मीटिंग हुई थी, डेफिनेटली उन्होंने क्या कहते हैं, इस बेंचमार्क रेट में जो है बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली सुधार करा है इन द टर्म कि जो आपकी क्वालिफिकेशन रेट है अब उन्होंने चेंज कर दिया है। सो पहले जो बट इट विल बी अफेक्टिव एज ऑफ April 6, 2020। सो जहां हम अपने क्लाइंट्स को 5.19 जो हमारा बेंचमार्क रेट है उस पर क्वालिफाई करते थे, अब हम उनको 5-year fixed जो यू नो मॉर्गेज रेट है, मीडियन ऑफ 5-year fixed rate जो रेट है उस पे +2 पे हम उनको यू नो क्वालिफाई कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अपना जो है 5-year median जो फिक्स रेट है 2.89 है, तो 2.89 +2 तो हम अपने क्लाइंट्स को जो है एज कंपेरेटिवली 5.19 की जगह 4.89 पे क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू नो एवरी आई फील लाइक एवरी लिटिल चेंज कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट, राइट? तो इवन ये ज्यादा, काफी सारे हमारे क्लाइंट्स ने बताया कि ये ज्यादा चेंज नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं है, बट फिर भी ये $30,000 to $50,000 की जो है वेरिएशन लेके आता है कि जहां अगर आप 5 lakh की मॉर्गेज लिए क्वालिफाई हो रहे थे तो आप 5.5 lakh की मॉर्गेज लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो बेसिकली इट एवरीथिंग लुक्स गुड एंड इट लुक्स टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द इंडस्ट्री विच विल हेल्प अस नाउ क्वालिफाई आवर क्लाइंट्स, एंड होपफुली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यू नो आगे वाले टाइम पे जो है मॉर्गेज के रूल्स जो है वो थोड़े से और आसान करें ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्वालिफाई होने में आसानी हो, यू नो उनको हाई रेट पे मॉर्गेजेस ना लेनी पड़े। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट से हमेशा बात करें, उनके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स अंडरस्टैंड करें, उनके क्रेडिट को समझे, उनकी इनकम को समझे, उनकी एम्प्लॉयमेंट को समझे, और उस हिसाब से उनको जो है मॉर्गेज ऑफर करें, कौन सा बैंक कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट होगा उस हिसाब से उनको ऑफर करें। सो अगेन यू नो एज हम हमेशा बात करते हैं कि रेजिडेंशियल मॉर्गेज हो चाहे कमर्शियल मॉर्गेज हो, आप हमसे जरूर बात कर सकते हैं। अगेन जब हम रेजिडेंशियल मॉर्गेज की बात हैं, सो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स होते हैं, अच्छा आपसे प्राइवेट मॉर्गेज करते हैं या आपसे परचेज करते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिडेंशियल मॉर्गेज, ऑफ कोर्स डेफिनेटली किसी भी तरह की मॉर्गेज हो, चाहे आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है چاہے آپ نے ری فائنینس کرنی ہے, چاہے آپ کو لائن آف کریڈٹ چاہیے, یو نو, چاہے آپ نے انویسٹمنٹ پراپرٹی بائی کریے, کسی بھی طرح کی مارگیج ہے, وی ڈو ایوری تھنگ ان ہاؤس. ہم ساری مارگیجز آف کورس کر کے دیتے ہیں, ایز وی آل نو بینکس تو ڈیفینیٹلی یو نو ون آف دا مین لینڈرز, وی آلسو ہیو آلٹرنیٹیو لینڈرز, پلس وی ہیو آر اون پرائیویٹ لینڈرز. تو اگر کسی بھی ریزن سے آپ کا کریڈٹ خراب ہے یا آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے پرائیویٹ مارگیج چاہیے, وہ بھی بہت ہی اچھے کمپیریٹو ریٹ پہ ہمارے پاس پرائیویٹ مارگیج ہے. سو یو نو, اس سیگمنٹ میں میں اپنے سب لسنرز سے, اپنے کلائنٹ سے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, یہ بولنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ایک پروفیشنل ایڈوائس چاہیے تو آپ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریں. ہمارا فون نمبر ہے 647-923-5659, 647-923-5659, اینڈ وی آر ویری کوئک ود آر ریسپانس, وی آر ویری کوئک ود آر سروسز گیون ٹو آر کلائنٹس. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے یو نو اپوائنٹمنٹ لے کے ہمیں آفس آ کے بھی مل سکتے ہیں. ہمارا آفس ایز یو آل نو اٹس ان برامپٹن, سچویٹڈ آن ایئرپورٹ روڈ اینڈ کوئین اسٹریٹ, اینڈ اگین دا فون نمبر ٹو کانٹیکٹ اس از 647-923-5659.
جی, اس وقت جسمین پرمار سے بات ہو رہی ہے. جسمین جی, ایک کوسچن آیا تھا جو کہ یہ تھا کہ اگر سپوز کسی کی دو مارگیجز ہیں, یہ مطلب ایک مارگیج ہے سیکنڈ مارگیج, اس صورت میں بھی آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, بیسٹ ریٹ کچھ دلوا سکتی ہیں؟
ہاں جی, ڈیفینیٹلی. تو یہ تو بہت ہی اٹس ون آف دا مین تھنگس, تو ہم یو نو وی ڈو دس ایوری ڈے کی بہت ریزنس کی وجہ سے ہماری آف کورس جیسے فرسٹ مارگیج بینکس کے ساتھ ہوتی ہے اور ہمیں پیچھے سیکنڈ مارگیج لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی بھی ریزنس کر کے, رائٹ؟ جیسے ہم ہمیشہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ سیگمنٹس میں بات کرتے ہیں, آپ کے ڈیتھس پڑ گئے ہیں یا آپ کو ایمرجنسی پیسے کی ضرورت ہے, تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فرسٹ مارگیج کو ود آؤٹ ٹچ کریں ہم پرائیویٹ مارگیج اٹھا لیتے ہیں سیکنڈ, تو ہم اس کو اس سچویشن میں ہم اپنے کلائنٹس کی دونوں مارگیج کو کمبائن کر کے, جس کو ہم کہتے ہیں کنسالیڈیشن آف بوتھ مارگیجز, ان کو ایک مارگیج کر کے ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کی ایک پیمنٹ ہو. اور ایز وی نو کہ سیکنڈ مارگیج پہ تو صرف انٹرسٹ جاتا ہے, پرنسپل کچھ بھی نہیں جاتا. سو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بھی ٹائم بینگ جیسے ایک سال کے لیے اگر لی ہے پرائیویٹ مارگیج, تو ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ دونوں مارگیج کو کنسالیڈیٹ کر کے آپ ایک مارگیج کر لیں, بیکاز اف یو کیپ رینیوئنگ اٹ یو ول ڈگ ڈاؤن ڈیپ ان ڈیتھ اینڈ اٹ ول بی ہارڈ فار یو ٹو کم آؤٹ. سو بیسٹ سولوشن اس کیس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ دونوں مارگیج کو کمبائن کر کے ایک مارگیج بنائیں تاکہ آپ کی ایک پیمنٹ ہو جس میں آپ کا پرنسپل اور انٹرسٹ دونوں جائے.
بہت اچھی طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. جیسمین, اپنا نمبر ایک دفعہ دے دیجیے.
ہاں جی, ضرور سر جی, ہمارا فون نمبر ہے 647-923-5659. ہمارا آفس برامپٹن میں ہے, فیل فری ٹو گیو اس اے کال, وی آر اویلیبل 7 ڈیز اے ویک فار یو, 365 ڈیز اے ایئر. سو اگین فون نمبر از 647-923-5659.
تھینک یو جیسمین جی, وی وش یو دی بیسٹ اینڈ ہیو اے نائس ویکینڈ جی.
تھینک یو
سو مچ سر جی, ہیو اے گڈ ویکینڈ. تھینک یو جسمین جی. اور چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اب آ جائیں گے, ہماری جو ٹرین ہے 7:70 AM کی جو ٹرین ہے, یہ اب چلے گی گیم کی طرف. جی ہاں, کرکٹ چل رہا ہے, پی ایس ایل کا بخار چڑھا ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کو رات کو جاگ جاگ کر میچز دیکھ رہے ہیں کیونکہ ادھر دن ہوتا ہے ادھر رات ہوتی ہے, اور وہ سارا کچھ ہے. ڈاکٹر عدنان میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ پروگرام کرتے ہیں یہ آواز ٹی وی کے اوپر, آپ میچ پوائنٹ میں ڈاکٹر عدنان جن کا ایکسپیرینس ہے, اور ڈاکٹر ہیں ویسے پیشے کے لحاظ سے, لیکن اتنی نالج ہے ان کے پاس کرکٹ کی کہ ان کے پاس ڈیٹا, آپ کچھ بھی پوچھ لیں ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. تو میں تو کہتی ہوں ان کو, یہ بھی سپورٹ کے بھی ڈاکٹر ہیں. سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر عدنان, کیسے ہیں آپ؟
جی ویلکم, سلام سروت, لانگ ٹائم بیک, آئی ایم ان دی ہوم بیک. جس طرح کے پاکستان سپر لیگ پردیش سے آخر کار گھر واپس لوٹ آئی, ایسے ہی جو میچ پوائنٹ کی ٹیم ہے وہ ویسے ہی پردیش سے واپس اپنے گھر میں 770 پہ میچ پوائنٹ کی جو ٹیم ہے وہ لوٹ کے واپس آ گئی ہے.
ویلکم,
تو تھینک یو سو مچ. اور سبھی سننے والے جو بھی ہمارے جو اس کا جڑے ہوئے ہیں, ہمارے لسنرز, ہماری آڈینس, ہمارے ویورز, سب کو ڈاکٹر عدنان کی طرف سے السلام علیکم, اور میچ پوائنٹ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید.
बिल्कुल डॉक्टर अदनान, ये जो चल रहा है मैच पीएसएल का, इसकी बड़ी जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई और मैचेस भी शुरू हो गए, थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में बताएं।
जी सरवत, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, बस काफी कुछ न्यूज इकट्ठी हुई है, कोशिश करूंगा इसको कवर करने की इस तरह से कि जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले आपको कि प्रदेश से जो लीग है लौट के वापस, आखिरकार कहते हैं ना कि वो घर को हर चीज कमिंग बैक टू द ओरिजिन, तो ऐसे ही ये लीग जो है प्रदेश से वापस आई है। इसका इंतजार हमें 5 साल करना पड़ा, जब इनॉगुरल सीजन में 2016 में जो है इसका आगाज हुआ और पीएसएल वापस आई। लेकिन अगर मैं पीएसएल में जंप कर गया तो खबरें बहुत ज्यादा हो जाएंगी पीएसएल की। छोटी सी मैं अब कुछ देना चाहूंगा, कुछ और न्यूज स्पोर्ट्स से मतलब पाकिस्तान से बड़ी खबरें कि दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम जो है कि मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं जितनी भी पाकिस्तान की आबादी इस वक्त सुन रही है हमें कि पाकिस्तान बीट इंडिया इन द कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल। इससे पहले पाकिस्तान वॉज नेवर एबल टू बीट इंडिया। पाकिस्तान इन अ वेरी स्टार स्टडेड मैच और बड़े शॉर्ट मैच के अंदर जिसमें बड़ा क्लोज स्कोर्स थे 43-41 पाकिस्तान ने पहली दफा भारत को अपने घर के अंदर जो है वो मात दी एंड पाकिस्तान बिकेम द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ कबड्डी। दूसरी बड़ी बात के जिस तरह मैंने आपको कहा कि लीग जो है वो वापस आ गई, लौट के वापस आ गई सरवत, क्रिकेट कम्स होम उसका बड़ा जो नारा लगाते हैं हम एमसीसी 11 जो मार्लीबोन क्रिकेट क्लब जिसकी बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है इंग्लैंड के अंदर, एमसीसी 11 जो है जब भी खेलती है किसी मुल्क के खिलाफ उसमें जो खिलाड़ी चुने जाते हैं ये बड़े एजाज की बात होती है। इट्स एन ऑनर टू प्ले विद एमसीसी 11। एमसीसी 11 जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही थी, हर मुल्क का दौरा करती है, ज्यादातर मैच लॉर्ड्स में होती हैं, ओवल में होती हैं। एमसीसी 11 की टीम आपको पता होगा कि कुमार संगकारा की क्यादत में पाकिस्तान पहुंची एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द 47 ईयर्स के एमसीसी वापस पाकिस्तान आई है। 1973 वाज द लास्ट टाइम व्हेन एमसीसी 11 वाज प्लेड इन द पाकिस्तान, एमसीसी टीम पाकिस्तान में आई थी 1973। 47 वर्ष कबल जो है जो रावलपिंडी के लोग जो है जानते होंगे कि जो रावलपिंडी का पुराना ग्राउंड था जिसको आर्मी क्लब कहते थे, आर्मी क्लब में वहां पर खेले जहीर अब्बास 11 के खिलाफ ये मैच हुआ था और जबकि जहीर अब्बास 11 को वहां पर 4 विकेटों से शिकस्त हुई थी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ये एमसीसी 11 अब 47 ईयर्स के बाद वापस आई है तो दोबारा 4 विकेटों से शिकस्त दोबारा दी उन्होंने पाकिस्तान टीम को। तो एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी कि वहां पर जहीर अब्बास की प्रेसिडेंट 11 उस वक्त के जो सदर मुमलकत थे जियाउल हक उनकी टीम थी, उनके नाम पे प्रेसिडेंट 11 रखा गया था। तो प्रेसिडेंट 11 ने वहां पर मैच हारा और अब जो है लाहौर कलंदर्स ने मैच हारा एमसीसी के अगेंस्ट और माइक डेनिस जो है उस वक्त आए थे वहां पर जो क्यादत कर रहे थे एमसीसी 11 की। और इसके अलावा जो आपको बताना चाहूँ सभी व्यूअर्स को कि एमसीसी का एक मैच जो है वो एचिसन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी हुआ और वहां पर उनको प्रैक्टिस खेलने का मौका भी मिला। वहां पर आपने देखा कि बहुत से खिलाड़ी गोल्फ खेलते हुए नजर आए, उन्होंने अपना शौक पूरा किया कुमार संगकारा के साथ। हाई सिक्योरिटी अलर्ट था, तकरीबन 3,000 के करीब रेंजर्स और दूसरे अफराद ने जो है वो लाहौर शहर को अपने घेरे में ले लिया था। और एचिसन के अंदर जो एमसीसी की और क्रिकेट की हिस्ट्री है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इट इज बिफोर द पार्टीशन 1941 वाज द ईयर जब वहां पर एचिसन के अंदर जो है वहां पर मैच खेला गया था। तो ये एक बड़ा तारीखी एक लम्हात थे कि एचिसन के अंदर भी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। इससे पहले जो आखिरी मैच खेला गया था जिसमें एमसीसी इन्वॉल्व थी वहां पर जहांगीर खान जिनके बारे में मशहूर जमाना आपने सुना था कि जिन्होंने छक्का मारा था और चिड़िया जो है इंतकाल कर गई थी उनकी बॉल हिट होने से, तो जो फेमस जहांगीर खान थे वो दैट टाइम एचिसन में वहां पर जो पाकिस्तान की 11 है उसकी क्यादत कर रहे थे और उस 11 का नाम NWFP था। और दूसरी जो टीम थी वो आई थिंक गालबन वो नॉर्दर्न इंडिया से आई थी, तो उस टीम के कप्तान जो थे उनका ताल्लुक मौजूदा भारत के कप्तान से था और ये बड़ा जबरदस्त यादगार लम्हात थे। एनीवेज कमिंग बैक टू द पाकिस्तान सुपर लीग, जिन लोगों को नहीं मालूम उनको दोबारा बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग का ऑफिशियल आगाज जो है वो 20 फरवरी 2020 से हो चुका है। क्रिकेट कम्स बैक होम, दुबई और शारजा के मैदानों और अबू धाबी के मैदानों से सफर करते हुए आखिरकार पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो वतन वापस लौट आई है। फिफ्थ सीजन है ये सरवत इस का और कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि इसको एचबीएल सुपर लीग क्यों कहा जाता है, तो मैं शॉर्ट सा बता दूं उनके बारे में। कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें बहुत से स्पॉन्सर्स आते हैं, इसी तरह कुछ मेन स्पॉन्सर्स होती हैं और कुछ इसको टेक ओवर कर लेते हैं कुछ सालों के लिए, जिस तरह की जो बेंसन एंड हजेस सीरीज होती थी एक जमाने में वर्ल्ड सीरीज कप, फिर उसका नाम कार्ल्टन एंड यूनाइटेड हो गया, चेंज किया गया, सिगरेट के नाम से चेंज किया गया, वर्ल्ड कप का नाम विल्स किया गया जो पाकिस्तान में 1987 का वर्ल्ड कप हुआ। तो ऐसे ही इस सुपर लीग को जो है ऑफिशियल पार्टनर है अब HBL 2021 तक, तो 3 साल की पार्टनरशिप हुई है इनके बाबैन 2018 से लेकर 2021, तो 2021 तक पाकिस्तान सुपर लीग जो है HBL पाकिस्तान सुपर लीग कहलाई जाएगी, जब तक के नए पार्टनर का इंतखाब नहीं किया जाता। फॉर द फर्स्ट एवर टाइम पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पूरी की पूरी एंटायरली विल बी प्लेड इन पाकिस्तान। आज से पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग अपने घर में सारे मैच कभी भी नहीं खेल पाई। 3 मैदान जो है वो आपको बड़ी बखूबी इल्म होगा कि कहां कहां ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं। कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो क्रिकेट का हेड क्वार्टर है और जहां पर 1996 वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले खेला गया था, द मैचेस विल बी प्लेड इन कदाफी स्टेडियम लाहौर। नेशनल स्टेडियम कराची जो कि कराची किंग्स का घर है, इसके अलावा रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का घर है, जहां पर अभी हाल ही में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है, जहां पर आपने नसीम शाह की एक जबरदस्त हैट्रिक भी देखी, आई वाज द आई विटनेस फॉर दैट हैट्रिक इन द रावलपिंडी टेस्ट। और इसके अलावा चौथा एक ग्राउंड भी यूज किया गया है, द फोर्थ ग्राउंड टू बी यूज्ड इन द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5, और वो ग्राउंड है मुल्तान का ग्राउंड जो कि सुल्तान्स का होम ग्राउंड होगा। आज से पहले यह ग्राउंड भी कभी भी सुपर लीग में यूज नहीं किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड कई लोग जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट्स ऑन किए हैं, रेडियो ज्वाइन किया है, वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो इस पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हैं। तो आपको पता चलूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, कोटा ग्लेडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पिशावर जेलमी की टीमें जो हैं उसमें शामिल हैं, ये फ्रेंचाइजेज शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, कोटा ग्लेडिएटर्स की टीम और पेशावर जेलमी की टीम, ये वो 3 फ्रेंचाइजेज हैं कि जो सक्सेसफुल अभी तक जो 4 टूर्नामेंट हुए हैं उनकी विनर्स करार पाई हैं। तो आप बिल्कुल हैरान नहीं होंगे कि मैंने 3 टीमों के नाम लिए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो वाहिद टीम है जिसने इसको डबल अप किया है, 2 दफा इस टूर्नामेंट को जीता है। इनॉगरल टूर्नामेंट जीता 2016 में और उसके बाद 2018 में दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग को दोबारा जीता। लेकिन बड़ी कोई धमाकेदार चेंजेस हुई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बड़ी चेंजेस जिसके बारे में मैं आगे जाके बढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कि डीन जोन्स जो इनको 4 साल से कोच कर रहे थे, उन्होंने इस लीग को फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड को फ्रेंचाइज को खैरबाद कह दिया है। और इसके अलावा जो बड़ी चेंज थी कि 4 दफा इनके साथ रहने वाले समी जो इनके साथ थे और पिछले सीजन में उनके कप्तान भी थे, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा नहीं है। और जो इनके फर्स्ट एवर PSL जो कैप्टन जिन्होंने लिफ्ट किया था ट्रॉफी को और जो इनॉगरल चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद पिछले साल उन्होंने यूनाइटेड को छोड़ दिया था, आई मीन कामयाब कप्तान, पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब कप्तान मिसबाहुल हक, जो अब पाकिस्तान टीम के मेन हेडक्वार्टर का जान है और पाकिस्तान की कोचिंग में उनका ऑल इन ऑल उनको करार दिया गया है, वो इस वक्त इसके हेड कोच हैं। और सईद अजमल जो पिछले सीजन में इनका स्पिन का किरदार अदा करते रहे हैं, वो इस वक्त स्पिन कंसल्टेंट का काम करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ।
डॉक्टर अदनान, जैसे कि आप बता रहे थे कि इतने जो PSL का यही इसको करते हैं, क्योंकि मेरे साथ स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं, ये जो पूरा सेगमेंट है ना, ये टेलीटाइम ने हमें इस वक्त इसका जो है वो स्पॉन्सर किया है। थोड़ा सा उनका पैगाम ले लेते हैं क्योंकि वीकेंड है और जबरदस्त डील टेलीटाइम पर चल रही है। इस वक्त मेरे साथ सोनू जी शामिल हो चुके हैं फ्रॉम टेलीटाइम। जी, वीकेंड के ऊपर क्या स्पेशल डील हमारे साथ शेयर करने लगे हैं?
थैंक यू सो मच जी सालिस नुआदा। सो वीकेंड से ले आके टेलीटाइम दा एक होम शो एक्सक्लूसिव इवेंट लगन जा रहा है मार्च के महीने दे विच, पर टेलीटाइम से तुसी आज तो ही इस सेल दा फायदा उठवा सकते क्योंकि सानू एडिशनल डिस्काउंट्स मिल चुके ने बड़े बड़े नेम ब्रांड्स तो, सोनी, LG, सैमसंग, किचनएड, जेनियर, मेटैग, GE, बॉश। तो जे तुसी नवे अपलायंसिस चाहुंदे आ जां TV चाहुंदे आ जां फर्नीचर चाहुंदे आ टाइटैप तो इस वीकेंड तो शुरू करो अपनी शॉपिंग। सो साढ़े को 55 इंच का 4K UHD स्मार्ट TV अल्ट्रा लो प्राइस से असं थोड़ा दे रहे हैं 579 का। नाल जी थानू 58 इंच का 4K UHD स्मार्ट TV चाहिए तो साढ़े को लै सकते हैं लो प्राइस ऑफ ओनली 599। 65 इंच का 4K UHD स्मार्ट TV 799। 75 इंच का जी सैमसंग का 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन TV अल्ट्रा लो प्राइस 1299। 82 इंच का 4K UHD स्मार्ट TV 1999 एंड अ लॉट मोर इन स्टोर डिस्काउंट तुम मिल रहे हैं टेलीटाइम पे। सो कॉल करके पूरी जानकारी लवो 905 273 5550. ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ 3 ਪੀਸ ਸੈੱਟ 1999 ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ। ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 36 ਇੰਚ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸਟੋਵ ਐਂਡ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, ਜਿਹਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਸ $4,000 $2,700 ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਅਪ ਟੂ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ $3,000 ਕੈਸ਼ ਰੀਬੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਈ ਸਟਾਰ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 25% ਔਨ ਟਾਪ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਜੇ ਸਟਾਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9052735050। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਟਮ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਲਸ ਫਰਨੀਚਰ ਐਟ ਅਲਟਰਾ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਟੂ 90% ਆਫ ਔਨ ਐਸ਼ਲੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸੈੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ 36 ਮੰਥ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹੁੰਚੋ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 9052735050 ਤੇ ਹੁਣੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
9052735053 ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਟਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। 9052735053 ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ, ਆਪ ਬਤਾਏ ਥੋੜਾ ਸਾ PSL ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਔਰ ਜੋ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਇਸਕੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋ।
ਜੀ, ਹਮਾਰੀ ਜਹਾਂ ਬਾਤ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੂਟਾ ਥਾ ਕਿ ਵੋ ਥਾ ਕਿ 6 ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਪਤਾਨੋਂ ਕਾ ਰਦੋ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਕੋ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਏ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਪਤਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿਆ ਥਾ, ਤੋ ਅਬ ਸਰਵਤ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੀਡਿੰਗ ਸਪਿਨਰ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਡ। ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਰਿਟੇਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਵੋ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਬਾਏ ਦਾ ਹਫੀਜ਼, ਔਰ ਉਨਕੋ ਸੁਹੇਲ ਅਖਤਰ ਵੈਟਰਨ ਪੇਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਸਕੋ ਚੇਂਜ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਔਰ ਡੈਰਿਨ ਸਮੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਟੇਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਫਾਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ੈਲਮੀ। ਇਟਸ ਐਨ ਰੈਕੋਰਡ ਨਾਓ, ਔਨ ਰੈਕੋਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਦ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨਕਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ to captain any franchise in the history of Pakistan Super League. Iske alawa jo Kodak Gladiators ki team reh gayi, Pakistan ke jo regular captain the, sabiq captain Sarfaraz Ahmed wicket keeper captain, wo abhi bhi usi ki baag daud jo hai wo sambhale hue hain. Historic 5th edition jo hai to be played in the Pakistan, ye 20 february se 22 march tak ye muqable jo hai jari rahenge. ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੂੰ 10 ਮਿੰਟਸ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਕੋ ਸਟਾਰਟ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ 26,068 ਬਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਮੇਂ ਫੇਂਕੀ ਗਈ ਹੈ 2016 ਫਰਵਰੀ ਸੇ ਔਨਵਰਡ ਆਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ। ਜਬ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਫੇਂਕੀ ਗਈ ਤੋ ਵੋ 26,069th ਬਾਲ ਵਾਸ ਥਰੋਨ into the Pakistan Super League for the season 5. opening match jo tha wo reigning champions Kotak Gladiators jo sabse mazboot team hai, jo do dafa ke finalist hai, is tarah reigning champion bhi hai, do dafa wo lose kar chuke hain, inse kamyab team jo final ka maza chakh sakti hai, Zalmi aur Gladiators se mazboot umidwar Pakistan Super League ki tareekh mein nahi aaya. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں یہ میچ تھا اور ٹو ٹائم ونر اسلام آباد یونائٹڈ کے اگینسٹ تھا، لیکن پلہ رہا بھاری گلیڈیٹرز کا۔ اگر مجھے موقع ملا تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ گلیڈیٹرز نے کیا کیا یونائٹڈ کے ساتھ، لیکن گلیڈیٹرز لیونگ اپ ٹو دا ریپوٹیشن اینڈ وان دیٹ میچ سنگل ہینڈڈلی فرام دا یونائٹڈ۔ پاکستان کے جو اسکواش لیجنڈ تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہانگیر خان، وہ جو 6 فرینچائزز ہیں ان کے تمام کپتانوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے ٹرافی انویل کی، اٹ واز دا گریٹ اوکیزن۔ اس کے علاوہ 6th ہائیسٹ رن اسکورر ان دا پاکستان سپر لیگ عمر اکمل، بڑی نیوز ہے، عمر اکمل جو ہے جو کوٹک گلیڈیٹرز کا حصہ تھے، عمر اکمل از نو مور ان دا لیگ، عمر اکمل اس لیگ سے باہر ہو چکے ہیں، اینڈ از بین سسپینڈیڈ آن بریچنگ دا پاکستان کرکٹ بورڈ اینٹی کرپشن کوڈ۔ ان کو اب کسی بھی قسم کی کرکٹ میں رہنے کے لیے الاؤ نہیں کیا گیا۔ ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ خاموش ہے، دیکھتے ہیں کہ اگلا فیصلہ جو ہے کم آئے گا۔ ریپلیسمنٹ کے طور پہ انور علی، جنہوں نے ایک بڑے کرنچ میچ میں پچھلی سپر لیگ میں 2017-18 کے سیزن میں کوٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کو ایک جتوایا تھا، اور ایک میچ بڑا نیرولی جو ہے ڈیفیٹ ہو گیا تھا، انور علی نے ریپلیس کر دیا ہے کوٹا گلیڈیٹرز کو جو ریزروس کے اندر تھے۔ رومان رئیس جو ہیں वो ही इज इन अ गुड शेप, काफी अरसे से वो जो है बाहर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, उनको फिटनेस के मसाइल से दो चार थे, वो भी वापस टीम में आ चुके हैं। इसके अलावा बताना चलूंगा कि पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में उर्दू कमेंट्री पेश की जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में उर्दू कमेंट्री आज तक पेश नहीं की गई। अहमद शहजाद जो है उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, देखते हैं कि अहमद क्या करेंगे। अहमद जो है वो ग्लेडिएटर्स का हिस्सा है। अहमद तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले, टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई, टी20 में वो वाहिद खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी। अब देखना ये है कि क्या वो इस दफा भी कामयाब हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग बिग इन द पीएसएल, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको अपने रन आउट में कंट्रोल करना होगा। वो जो उनकी रफ्तार थी रन आउट पे, रन आउट खुद भी होने की और दूसरों को भी करने की, वो आज भी कायम और दायम है। अगर मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि वो कितनी दफा इन्वॉल्व हुए हैं। 13 मरतबा में से 6 दफा उन्होंने अपने पार्टनर्स को आउट किया और बाकी दफा वो अपने आप को ले डूबे। उनको अपने इस चीज पे काबू पाना होगा। हसन अली और पेशावर जलमी के हसन अली और मोहम्मद अकरम ने बड़ा गुड जेस्चर था नेशनल स्टेडियम कराची में, जब ये ओपनिंग सेरेमनी से पहले जो लास्ट सेशन हुआ उसमें जितने लोग काम कर रहे थे, जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से जिनका ताल्लुक था और जो उसकी तजीनों उसकी रंग और रोगन में मसरूफ थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने खाना खाया, उनको खाना बांटा। बड़ा गुड जेस्चर था पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से। इसके अलावा जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसके अंदर जो स्टूडियो है उसको रंगारंग तस्वीरों से सजा दिया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तस्वीरों से, जो पाकिस्तान का विनिंग नोट था। शुएब मलिक पे बड़ी नजरें होंगी इस वक्त कि वो जेलमी के साथ है, कि लास्ट 3 T20 लीग्स में उनका किरदार बहुत अच्छा रहा। अगर मैं आपको बता सकूं कि लास्ट 3 लीग्स में मेरे पास रिकॉर्ड जो सामने आ रहा है, अमेजोन वॉरियर्स जो CPL का हिस्सा थे वहां पर 317 रन उन्होंने बनाए, उनकी एवरेज 63 और स्ट्राइक रेट 124.63 था, जबकि राजशाही रॉयल्स बांग्लादेश लीग के अंदर उनके 455 रन से 37.91 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 130 था। और नाइट्स के अंदर वैनकूवर नाइट्स जब वो खेले G20 कनाडा के लिए तो वहां पर उन्होंने 213 रन जोड़े एट द एवरेज ऑफ 213 और उनका स्ट्राइक रेट 161 था। तो मुझे लगा कि शुएब मलिक कुड हैव बीन वेरी लीथल, लेकिन आज का मैच जो जेलमी हारा, That was a very good captaincy by the Karachi Kings. Karachi Kings की जो कप्तानी की गई इमाद वसीम की जानिब से, आपको मालूम होगा कि शुएब मलिक और कामरान अकबल दोनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। दे आर क्वाइट पोटेंट अगेंस्ट द स्पिन। जू ही वो दोनों क्रीज पे आए, किसी भी मौके पे इमाद वसीम ने गलती नहीं की और उनको स्पिन अटैक के सामने एक्सपोज नहीं होने दिया, और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कामरान अकबल डेलपोर्ट को अपनी विकेट दे बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए और वहीं से मैच का पासा जो है वो पलट गया। बाबर और इमाद जो है उन्होंने रिंग्स टेबल की, बहुत अच्छा खेले। बाबर तो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह अपनी जिंदगी में पैदा होते ही रिंग्स को एंकर करने आए हैं, बहुत अच्छा खेले। मुझे लगा था कि कोई टेस्ट फॉर्मेट से खेल रहे हैं, उनके कोई प्रेशर लगता ही नहीं उनके फेस पे, बिल्कुल एक स्पार्ट फेस, प्रेशर लेस फेस जो है उनका बाबर का। और इमाद ने ऑब्वियसली उनको जनरेट की पेस उनके साथ और कराची किंग्स ने बड़ी जबरदस्त फतह हासिल की। इसके अलावा मैं आपको कुछ और न्यूज़ देना चाहूँगा आपको कि ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान के अंदर स्पाइडर कैम्स यूज़ होंगे। स्पाइडर कैम्स जो हैं इस सुपर लीग को मज़ीद एक्साइटिंग बना देंगे, और जिस तरह कि आपने बिग बैश लीग में देखा उसी तरह से जो है ये शुरू किए जाएंगे यहाँ पर कैमराज। डेविड मिलान जो हैं बड़े खुश हैं पाकिस्तान आके, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का पाकिस्तान में आना बहुत खुशाइंदा है, इज़ वेरी हैप्पी। साइमन टोफल, जब पाकिस्तान पे वो अंदोनाक वाक्या हुआ और 2009 में श्रीलंका की टीम पे एक अटैक हुआ तो वहां पर साइमन टोफल भी मौजूद थे। साइमन टोफल इस लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान वापस लौटे हैं और कहते हैं कि इज वेरी हैप्पी टू सी क्रिकेट बैक इन द कंट्री, और बिग वेलकम दिया गया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। साइमन टोफल के साथ भी यहां पर आप देख चुके हैं, क्रिस लिन यहां पर आ चुके हैं, इसके अलावा कुछ और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी यहां पर आए हैं, फवाद खान आए हैं, तो लॉट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर देयर, इज अ वेरी गुड जेस्चर अलोंग विद शेन वॉटसन।
जी बिल्कुल डॉक्टर अदनान, मैं वही सोच रही थी कि मैं आपको रोकना नहीं चाह रही थी क्योंकि आप इतने माशाल्लाह सारा बता रहे थे और मुझे टैक्स मौसूल हो रहे हैं क्योंकि क्रिकेट की इतनी सारी अपडेट है जो कि डॉक्टर अदनान हमारे साथ रहे हैं, यहीं स्टूडियो में ही हैं। अगर आपका भी सवाल होगा तो हमारे पास जितना टाइम बचेगा हमारी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि सिंस ही केम ऑल द वे टू आपको इससे अपडेट करने के लिए, जो PSL का बुखार चढ़ा हुआ है सबको, तो डॉक्टर अदनान यहीं पर हैं, वो भी हम आपको आगे चल के लाइन्स खोलेंगे और आपके क्वेश्चंस भी ले लेंगे थोड़ी देर के बाद. लेकिन क्रिकेट से फिर हम गाड़ी मोड़ते हैं अपनी, हम खाने पीने की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि भाई क्रिकेट देखते देखते भूख भी लग जाती है, और जब भूख लगती है तो फिर कहाँ जाना होता है, भी मजेदार और कुछ हेल्दी वे में खाना खाना चाहिए. तो हम आपको ग्रिल एंड हट लेके जाना चाहते हैं, और आज फ्राइडे का दिन है. हमेशा की तरह हमारे साथ इमरान भाई होते हैं. ये वो वाले इमरान साहब नहीं ये ग्रिल एंड हट वाले इमरान खान है. इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं. मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब ठीक ठाक है. और मैं वही देख रही थी, मैंने कहा मौसम इतना अच्छा बाहर हो रहा है, आप बाहर से आ रहे हैं, ठंड है?
ठंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है.
तो फिर ठंड नहीं है तो
महीना जो है वो ठंड वाला है.
महीना ठंड वाला है. तो मैं देख रही थी वीकेंड आ गया है, जबरदस्त मौसम भी होगा, 12 टेम्परेचर है. तो ग्रिल एंड हट पे क्या स्पेशल होगा कि लोग बाहर निकलें, मौसम एंजॉय करें और ग्रिल एंड हट पे जाएं?
असल में अभी मैं आ रहा था तो अभी जब एंटर हुआ तो क्रिकेट की बातें चल रही, तो बैठे बैठे अभी मुझे मैसेज आया कि इमरान भाई वो सईद अनवर साहब आए हैं अभी ट्रांटो में ना, तो मिलना तो आ जाओ.
अच्छा.
तो मैंने कहा मैं आपकी क्रिकेट में मैं अभी थोड़ा सा ऐड कर दूं, पाकिस्तान से अभी माशाल्लाह सईद अनवर साहब अभी आए हैं.
अच्छा, मेरा ख्याल है फिर सेम ही फ्लाइट है, अरफा जी भी उसी फ्लाइट से आई हैं.
वल्लाह आलम आए
हो सकता है कि अरफा जी की मुलाकात हो गई उनसे,
हो सकता है, नेवर न्यू.
अभी पहुंचे हैं?
ही जस्ट अराइव.
अच्छा, बस फिर सेम फ्लाइट है.
तो ग्रिल एंड हट पे जो है भाजी, वो पिछले 7 साल से हम एक ही चीज की आवाज लगा रहे हैं. जिस तरह के PSL में आप जब भी जाएंगे तो हमेशा 4-5 टीम ही मिलेंगे, तो हमारे पास भी 4-5 आइटम हैं. जब ग्रिल एंड हट का नाम लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एज ऑलवेज आई रिक्वेस्ट कि इफ यू वांट टू ईट ताजा मजेदार बिरयानी और कढ़ाई, प्लीज कम इन. एंड on the weekend we have few combination which I would like our viewers and listeners to digest. I am trying to make a menu in which we can have our youngsters, ke hamare bache youngsters aur hamare bade dono usme adjust ho jaye. So what does that mean? It means that we are trying to put steaks, pasta, burger, and seafood in the menu. On the same time, kadhai, kebab, bihari, or biryani. So, kal raat mere paas ek saathi baithe the, kehne lage, Imran bhai, how long does it take for you to establish this restaurant? To maine kaha, bhai, restaurant to main establish kar leta 6 maah ke andar. We have no problem with that. But to have that team, that took me 8 years.
क्योंकि इमरान भाई आप हर जगह तो नहीं हो सकते, आपके हाथ की जो तरीका है आपका, क्योंकि वो टीम ही है जो कि फिर आगे
team,
है ना,
इट्स टीम, और उसके अंदर फिर कुछ ऐसे साथी हों जो टीम को साथ लेके चले. उनकी जो द इंस्पिरेशन लेवल हैज टू बी हायर देन मी, एंड आई कैन नॉट convert that level into them higher than me till I don't learn how to convert that higher than myself.
So true.
तो इन क्योंकि अगर वो दिल से नहीं बना रहे, वो दिल से नहीं बना रहे, तो खाने वाला enjoy कर ही नहीं सकता,
जायका भी नहीं आता.
हाँ, हमारे पास दो sources हैं. हमारे जितने भी खाने हैं ना बाजी, ये अगर आप दिल से नहीं बनाते, ये machineize नहीं हो सकता. अब निहारी कौन मशीनाइज करेगा? हमारे तो यहाँ तक भी कहते हैं भाई, इधर से काम भी हो रहा हो, उधर से जिक्र भी हो रहा हो, उधर से फिक्र भी हो रहा हो, है फिर वो जो खाने का मजा आता है, एंड देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट. और अगर आप, हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में ऊंचा और आला मकाम अता फरमाए, कहने लगे कि इमरान बेटा, खाना ताहिर भी हो, हलाल भी हो, मुताहिर भी हो. तो मैंने उनसे पूछा इसका मतलब क्या? कहने लगे हलाल का मतलब तो हो गया कि इसको खाने की इजाजत है. दिस इज व्हाट इट मींस बाय हलाल, कि ये इट इज परमिटेड. ताहिर, ये पाक है,
ठीक है.
मुताहिर, इसके अंदर एबिलिटी है ये नापाक को पाक कर दे. तो वो अगर चीजें हम नहीं सीखते या हमारी टीम नहीं सीखती तो फरमाया ये खाने की खूबियों में से खूबी है।
तो वाकई खाने अगर आप ग्रिलन हट पे जाएंगे तो उसमें ताहिर मुताहिर
ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ,
कोशिश कर
रहा हूँ, डेवलपिंग अल्हम्दुलिल्लाह, माय टीम इज अमेजिंग। आई विल नॉट टॉक टू मच अबाउट माय प्रोडक्ट बट आई विल से दिस टू यू, माय टीम इज अमेजिंग।
बिल्कुल, एक मुश्तरका चीज ही होती है जो कि फाइनल प्रोडक्ट जो निकलता है ग्रिलन हट जो है वो इट्स बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी कॉम्बिनेशन सबके एफर्ट का।
एक चीज छोटी सी शेयर करता हूँ, आफ्टर दैट आई विल क्लोज माय टॉक। Today I have one kid, he is working with me almost a year. He is only 17. So I said, Mehboob, today you are going to conduct the meeting. And very delightfully, very wo chehre pe uske na badi ek muskurahat aur ek bada maskharapan aur ek bada kehta, uncle main wahi baat karun jo aapne mujhe 4 maah pehle sikhayi thi. वो वाली कर लो। तो वो क्या थी, आया आकर के खड़ा हुआ, कहना भाई मेरी बात सुनो, मैंने अंकल से बस एक चीज सीखी है, व्हेन यू ब्रिंग योर फिजिकल वजूद एग्जिस्टेंस टू द वर्क, मेक श्योर यू ब्रिंग योर हार्ट एंड माइंड एज वेल।
सो ट्रू, बिल्कुल सही बात है, फिर मजा तो उसी का आता है ना।
अब एक आदमी कढ़ाई बना रहा है, उसका वजूद वहां पे है और उसकी वो जो है क्या कहना चाहिए कि माइंड एंड हिज हार्ट इज नॉट इन द कढ़ाई, तो वो उसको लाने की जो है वो जो एफर्ट है उसमें 7 साल लगे, 8 साल लगे।
बिल्कुल,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। गलतियां सबसे होती हैं, हार जीत सबके साथ लगी हुई है। तो ऑन दिस वीकेंड इंशाल्लाह व्हेन यू कम, वी आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस कि भाई बिरयानी 7 बजे से पहले आए, हम दम आपके लिए दम से निकालेंगे। इफ यू डू डाइन इन, इफ यू आर डूइंग टेक आउट, यू हैव टाइम टिल 10 o'clock।
अच्छा,
इसी तरह कढ़ाई टाइम लेके आए, वी विल मेक एब्सोल्युटली फ्रेश फॉर यू, ताजा टमाटर, ताजा गार्लिक, ताजा फ्रेश जिंजर, एवरीथिंग फ्रेश। एंड लास्ट वीक एज वेल आई वाज टेलिंग यू आई एम डेवलपिंग अ वेबसाइट वेयर आई एम गोइंग टू पोस्ट माय डेली रिसीट्स ऑफ द डेली प्रोड्यूसर्स, ताकि हमारा खाने वाला जो है उसको पता हो व्हाट इज ही गोइंग टू ईट। तो इसके साथ आई विल डिस्क्लोज, आई मीन आई विल कंक्लूड माय टॉक एंड इंशाल्लाह वी विल टॉक नेक्स्ट वीक। In this week, if you want to enjoy biryani, kadhai, kebab and steaks, 1935 Drew Road, Unit 15.
Major intersection kya hoga?
Bramley and Derry. One block north of Derry, it's called Drew Road, 1935 Drew Road. It's a second traffic light north of Derry, on Bramley.
Aur aapka number kya hai?
905-405-8383. Very easy number, 905-405-8383.
Grillin Hut ke Imran sahab yahan par maujood hain, aapko aake hamesha ki tarah paigham dete hain. Weekend hai, aap apni khud jaye, apni families ke sath jaye aur mazedar, zaiqadar aur taza खाना जो है वो एंजॉय कीजिएगा। एक दफा नंबर अपना
905-405-8383।
इमरान भाई, आपको भी मैंने क्रिकेट खेलते देखा है और लीड करते देखा है, आपको भी क्रिकेट का जो है वो थोड़ा पीएसएल वॉच कर रहे हैं आप?
मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, and I'm going to say this today, unfortunately, cricket is the game to play, not to watch. I don't watch, I play.
Acha acha, aap khiladi hain.
I love to play it. Even this morning, me and my son, we were playing squash, right? These are the two things I never watched on the screen in my life.
Theek hai, bilkul.
But when it comes to play, still my mouth drools.
क्या बात है जी। और ग्रिलन हट के इमरान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, 905-405-8383 पर पहुँचना है, जरूर जाइएगा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ से फिर हम अपनी जो गाड़ी का रुख है पीएसएल की तरफ करना चाहते हैं, और कुछ हमारे पैगाम भी हैं, लेकिन ये कि दो कमर्शियल लेके फिर हम प्रोग्राम में दोबारा वापस आते हैं।
विलेज टेस्ट फ्लेवर्स ऑफ पाकिस्तान विलेज टेस्ट. हर रोज कढ़ाई स्पेशल एंड डिफरेंट फ्लेवर्स में कढ़ाई को एंजॉय कीजिए. 13 प्लस आइटम्स पर मुश्तमिल जिसमें साग और पराठा भी शामिल है. ब्रेकफास्ट बफे जस्ट 14.99. 13 प्लस आइटम्स पर मुश्तमिल बफे एवरी डे. लंच बफे 11.99 और 30 आइटम्स पर मुश्तमिल बफे जिसमें आलू गोश्त भी शामिल है 19.99 में. ब्रेकफास्ट सैटरडे संडे. लंच बफे मंडे थ्रू थर्सडे एंड डिनर बफे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. विलेज टेस्ट 4141 डिक्सी रोड 9052323663 विलेज टेस्ट.
जी हाँ सामीन, अब वीकेंड है, आपको पता है बहुत कुछ था प्रोग्राम में और हमने कोशिश यही की थी कि बहुत कुछ आपके लिए लेकर आएँ और कुछ जिसमें खबरें भी थीं. आप खाने पीने का भी सुन रहे हैं, आपको वीकेंड है क्योंकि वहाँ उसकी तरफ भी लेकर जा रहे हैं और साथ साथ आपको खेल से भी पीएसएल से भी पूरा अपडेट कर रहे हैं. ऑल द वे हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अदनान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको अपडेट कर रहे हैं पीएसएल से. जी बाकी का टाइम आपका.
जी थैंक यू सर, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द मैच पॉइंट एक्सक्लूसिवली ऑन 770 AM. जैसे कि वीकेंड है लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये वीकेंड नहीं था. उनके लिए ये बहुत बुरा वीकेंड था क्योंकि कोटा ग्लेडिएटर्स ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया. अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड पे आऊँ जो मैच हुआ तो उसमें टोटल मैचेस जो है ये 9 खेल चुके हैं आपस में, जिसमें ग्लेडिएटर्स ने 5 जीत रखे थे और इस्लामाबाद ने 4. तो एक बड़ा उमदा मौका था यहाँ पर हिसाब चुकाने का और ये 5-5 हो सकते थे. लेकिन आफरीन हो ग्लेडिएटर्स पे जिन्होंने इसको मजीद बढ़ा के 6-4 पे इसको ले गए. डिफेंडिंग चैंपियंस ग्लेडिएटर्स ने यूनाइटेड को बिल्कुल एक यकतरफा मुकाबले में शिकस्त दे दी और उनको यकीन दहानी कराई कि अगर उनके पास पेस अटैक और स्कोर नहीं हुआ तो चाहे वो 300 रन भी बना लें इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच नहीं जीत सकती अच्छी बॉलिंग के बगैर. आजम खान उन्होंने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए. हु इज आजम खान आप सब लोग सोच रहे होंगे, जिनको नहीं मालूम उनको बताता चलूं, पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप विनिंग विकेट कीपर मुइन खान और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और करंटली कोच ऑफ द कोटा ग्लेडिएटर्स मुइन खान के साहबजादे आजम खान, जिनके ऊपर काफ़ी उंगलियां जो हैं वो उनके ऊपर उठ रही थी. उन्होंने अपनी फिजीक जो है जिस पर बड़ी एक होती थी क्वेश्चंस होते थे कि हाउ ही विल प्ले क्रिकेट, व्हाई ही इज बीन इंक्लूडेड इन द स्क्वाड, उन्होंने साबित किया कि व्हाई इज देयर. 30 ball 50 जो उन्होंने खेली दैट वॉज द मैच विनर. And then it was too difficult for United to come back in the game after the Azam Khan silences critics with a 59 runs overall on the 33 balls. Iske alawa David Milan jo hain wo pehle batsman ban gaye when the cricket comes back home. Pakistan Super League season 5 ki pehli miss century banane wale khiladi jo hain usme unhone apna naam register kiya. Kota ke jo top 5 बल्लेबाज थे वो पांचों राइट हैंडर थे. ये जहन में रहे कि देर वॉज अ बैड कैप्टेंसी फ्रॉम शादाब खान. शादाब खान को वहां पर जो जफर गोहर है इस केस में उनको लाया जा सकता था क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वो डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते थे. लेकिन ये जानते हुए भी कि टॉप ऑर्डर जो है वो ऑल राइट हैंडर है एंड दे आर स्मैशिंग एंड बैंगिंग द बॉल वेरी हार्ड, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और नतीजा वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था. जस्ट लाइक द लास्ट लीग कोटा ग्लेडिएटर रिमेन द विनर. इसके अलावा हसनैन के बारे में बताता चलूँ आपको कि हसनैन जो है ही बिकेम द मैन ऑफ द मैच. 4 विकेटें ली उन्होंने, 5 ना ले सके, 4 for 25 और टॉप स्पीड जो उनकी रही है इस बॉलिंग के दौरान डेड विकेट के ऊपर, जो बड़ी खुशाइन बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, 147 किलोमीटर पर आवर एंड येट टू सी हारिस रऊफ. उनको भी देखा गया, हारिस रऊफ को लाला ने अच्छा खासा धो दिया सुल्तान के मैच में, उन्होंने छक्का भी जड़ दिया लेग साइड पे. लेकिन हारिस रऊफ को अगर मैं कलंदर्स पे जाऊं तो कलंदर का हैविंग अ वेरी स्ट्रांग अटैक, वेरी फास्ट बॉलिंग अटैक, शाहीन शाह आफरीदी और इसके अलावा उनके पास जो है अब आ चुके हैं उस्मान खान शिनवारी भी उनके पास आ चुकी हैं. लेकिन दोबारा से देखना पड़ेगा कि कलंदर्स की फेट क्या राणा फवाद के साथ बदल सकती है कि नहीं बदल सकती. सब कुछ बदल गया, PM बदल गया, किस्मत बदल गई, दुबई से हम पाकिस्तान पहुंच गए सरवत. लेकिन लाहौर कलंदर्स की किस्मत कब बदलेगी ये हम देखेंगे इस सीजन के अंदर के क्या होने वाला है.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नान, बहुत कुछ कवर किया आपने थोड़े से टाइम में और बस टाइम इस वक्त इजाजत हमें नहीं दे रहा, बाकी कुछ मैच पॉइंट में देखते हैं. मैच पॉइंट पे आप डॉक्टर अदनान को ये आवाज टीवी पे वॉच करते हैं, इनकी जितनी भी जो एपिसोड्स हैं यूट्यूब पर आप देख सकते हैं. और आप आपका नंबर क्या होगा, किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता
है? बिल्कुल जी, मैच पॉइंट का हमारा जो नंबर है वो 786-544-5566 है. कोई क्वेश्चन हो आपका पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, या आप हमें सजेशन देना चाहते हैं मैच पॉइंट के लिए, हमारी मैच पॉइंट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके अंदर कोई आउटपुट देना चाहते हैं, उसमें अपनी कोई वीडियो फीड देना चाहते हैं, तो प्लीज यू कैन डू अस अ व्हाट्सएप 786-544-5566, कंट्री कोड +1 लगाना नहीं भूलिएगा.
और बहुत बहुत शुक्रिया, बस यहाँ इतना ही टाइम था हमारे पास. इजाजत चाहते हैं आपसे, हर एक को याद करते हुए, और वो लोग जो अपना सफर मुकम्मल करके जा चुके हैं, खास कर मुजफ्फर भाई को, कि अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत करे और दर्जात बुलंद करे. आमीन सुमा आमीन. बहुत शुक्रिया, हैव अ वेरी नाइस वीकेंड. हमारी पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर अदनान आपके आने का भी बहुत शुक्रिया. हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
To listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
This station is now the ultimate power in the universe.
The station with the
best music.
Best music.
I love the music.
Best music.
I love radio. Music and more.
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7. हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए. लोकल लाइन पर रेडियो सर्विस के लिए डायल कीजिए 6475571017. eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं. इसके अलावा आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री. हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका बहुत بہت بہت شکریہ. آج بھی ہم خوبصورت, دلکش, مزاحیہ, معلوماتی اور مذہبی پروگرام سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایڈورٹائزمنٹ یا فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 6478986245. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح بی بی سی نیوز سے سیروین کے ساتھ.
میں ہوں سمرہ فاطمہ. آج سیروین کا اہم موضوع ہے, پیرس میں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مزید 4 مہینے کا وقت دیا گیا ہے. ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کو ابھی اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ سیروین میں آج یہ بھی شامل ہے, انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور پابندیوں کو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے, ان حالات نے کشمیری معیشت کا پہیہ روک رکھا ہے. اور ملیے گا ایک ایسے روبوٹ سے جو خود ہی بند کباب بنا لینے میں ماہر ہے. آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیروین دیکھ رہے ہیں. دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے بنائے گئے بین الاقوامی ادارے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. کسی ملک کو گرے لسٹ یعنی زیر نگرانی فہرست سے نکالنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے 39 ارکان میں سے 12 کی حمایت درکار ہوتی ہے. ایف اے ٹی ایف کے ایشیا پیسیفک گروپ نے گزشتہ برس نومبر میں پاکستان کو دہشت گردی کی مالی مدد کی روک تھام کے لیے 27 نکاتی ایکشن پلان دیا تھا. پاکستان نے گزشتہ برس فروری میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے جانے والی تنظیموں کو پاکستان میں بھی کالعدم قرار دے دیا تھا. اس کے علاوہ اس سلسلے میں پاکستان نے جو اقدامات کیے ان میں دہشت گردی کی مالی مدد اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت تقریباً 2000 مقدمات کا اندراج شامل ہے. اور اس ماہ کالعدم لشکر طیبہ اور جماعت الدعویٰ کے سابق سربراہ حافظ محمد سعید کو انسداد دہشت گردی کے خصوصی عدالت سے 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 11 برس کی سزا بھی سنائی گئی تھی. اسی موضوع پر مزید تفصیلات کے لیے پیرس میں ایف اے ٹی ایف کے صدر دفتر کے باہر سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی جاوید سومرو. جاوید, آج ایف اے ٹی ایف کے دفتر کے اندر اور باہر کیا کچھ ہوا؟
سمرا, جیسا کہ آج امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے بارے میں ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہونا ہے, تو صبح سے یہ میرے پیچھے جو ایف اے ٹی ایف کا دفتر ہے اس میں تمام ممالک کے وفود پہنچے تھے اور لگتا ایسا ہے کہ جو ڈیسیشن لینا تھا ان کو وہ پہلے سے ہی اس پر متفق تھے. آج بنیادی طور پہ جو ایک ڈرافٹ بننا تھا, جو پریس ریلیز بننا تھا اس اجلاس کے اختتام پہ, اس کی تیاری ہو رہی تھی اور اب سے صرف چند لمحے پہلے ہی وہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو اگلے 4 ماہ تک یعنی جون تک فی الحال گرے لسٹ میں رکھا جائے گا اور پاکستان کو جو ایکشن پلان دیا گیا ہے اس کو مانیٹر کیا جائے گا, اس کو آبزرو کیا جائے گا کہ کیا پاکستان مزید 13 نکات پر عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں جو اس 27 نکاتی ایکشن پلان میں شامل ہے. تو آج کی اب تک کی صورتحال یہ ہے.
اچھا, وفاقی وزیر حماد اظہر کی قیادت میں جو پاکستان سے وفد آیا تھا ان میں سے کسی سے کیا آپ کی بات ہو سکی؟
دیکھیں, ہم نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے وفد سے کسی سے بھی بات ہو سکے لیکن کسی نے بھی بات کرنے سے کی حامی نہیں بھری, یہاں تک کہ پاکستان کے ہائی کمیشن سے بھی ہم نے رابطہ کیا یہاں فرانس میں, انہوں نے بھی ہم سے بات نہیں کی. وجہ اس کی یہ لگتی ہے کہ گزشتہ مرتبہ جب نومبر میں اجلاس ہوا تھا ایف اے ٹی ایف کا تو پاکستان اور انڈیا سے بعض وزراء نے پریس میں بات کی تھی جس پر بہت ہی زیادہ غصے کا اظہار کیا گیا یہاں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں کہ میڈیا سے بالکل اس سلسلے میں بات نہ کی جائے, یہ کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد تمام سیاستدانوں نے میڈیا سے بات کرنے سے اجتناب برتا ہے.
اچھا جاوید, پاکستان نے اپنی طرف سے بہت کوششیں کی, آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی جو اقوام متحدہ نے جن تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا تھا انہیں قلعدم قرار دیا پاکستان نے, اس کے علاوہ حافظ سعید کو سزا سنائی گئی, اس سب کے باوجود بھی کہاں پاکستان مطمئن نہیں کر پایا ایف اے ٹی ایف کو؟
دیکھیں جو یہ موجودہ اجلاس ہوا ہے اس میں ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے ان اقدامات کا جن کا آپ نے تذکرہ کیا اس کی تعریف کی ہے اور پاکستان نے جو کہا ہے کہ وہ صحیح سمت میں بعض اقدامات کیے ہیں وہ اچھے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پہ ایف اے ٹی ایف کا اس چیز پہ بہت غیر اطمینان بخش ہے پاکستان کے سلسلے میں کہ جو سزاؤں کی شرح ہے پاکستان کی وہ تمام محدود ہے. گزشتہ ایک ڈیڑھ سال میں تقریباً 2000 کے قریب کیسز ایسے ہیں جو دہشت گردی کی مالی اعانت کے سلسلے میں رجسٹر ہوئے ہیں پاکستان میں, لیکن سزائیں محض 50 کے قریب مقدمات میں ہوئی ہیں. تو ایف اے ٹی ایف پاکستان سے چاہتا ہے کہ اکراس دا بورڈ تمام شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کرے اور خاص طور پہ ان کے ذریعے جو شدت پسندی کو مالی اعانت ہوتی ہے اس کو روکے, تمام ایئرپورٹس پر, تمام سی پورٹس پر, تمام بینکوں کے ذریعے تمام لوگوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان سب کو مانیٹر کرے, اور جو بڑے نام ہیں شدت پسندی کے, مثال کے طور پہ حافظ سعید کا نام, مثال کے طور پہ جماعت الدعویٰ کے حافظ محمد سعید کا نام آتا ہے اور مسعود اظہر کا نام آتا ہے, ان کے خلاف بھی کارروائی کرے. پاکستان ابھی بہت اقدامات کرنے ہیں انہیں اس گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے, اور اگلے 4 مہینے ایف اے ٹی ایف اسی پہ نظر رکھے گا.
اچھا, گرے لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکالا گیا لیکن بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا گیا ہے, تو کیا پاکستان کے لیے اپنے آپ میں یہی ایک بڑی اور کامیابی کی بات ہے کہ کم از کم بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا گیا ہے؟
پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پاکستان اس پہ بہت خوش ہے, اور یہاں پہ جو پاکستانی وفد آیا ہے اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی اس لمحے اس مرحلے پر یہی کوشش رہی کہ پاکستان کو اس سے گرے لسٹ سے نکال کے بلیک لسٹ نہ کر دیا جائے, جو کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو فی الحال عمران خان اور اس کی ٹیم اسی بات پر مطمئن ہے کہ اگلے 4 مہینے کا ان کو مزید وقفہ ملا ہے جس میں وہ مزید اقدامات کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان مزید اقدامات کے نتیجے میں اگلے 4 مہینے کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ جسے کہا جائے, یا جو یہ ہے کہ اس کی نگرانی کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے.
پیرس سے جاوید سمرو, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ہمارے فیس بک پیج پر آئیے, وہاں آپ کو ویڈیو رپورٹس, تجزیے اور اہم خبریں سب ملیں گے. پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں, ہمارا ہینڈل ہے @BBCUrdu. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے کے بعد انڈین حکومت مسلسل دعویٰ کر رہی ہے کہ کشمیری میں ترقی کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا, لیکن 6 ماہ سے مسلسل غیر یقینی صورتحال سے 2-4 وادی کشمیر کی معیشت مفلوج ہوتی جا رہی ہے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, تجارت اور صنعت میں مندی کا رجحان ہے. اسی پس منظر میں حکومت نے کشمیر میں سرمایہ کاری کے عالمی میلے کا اعلان کر دیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ دیکھیے.
نوجوان صنعتکار عارفہ جان سری نگر میں قائم اپنے کارخانے کا دروازہ اب صرف صفائی کرنے کے لیے کھولتی ہیں. یہاں نہ پہلے جیسی گہما گہمی ہے اور نہ ہی کوئی کاریگر موجود ہے.
باقی چیزوں سے لڑ کر, کمیونٹی سے لڑ کر میں نے اپنا کچھ سٹینڈرڈ بھی بنایا تھا اور اپنا پروڈکٹس بہت پیمانے پہ اچھا بنایا تھا, لیکن یہی کہ جب اگست میں ہمارے حالات یہاں کشمیر کے خراب ہوئے تو اتنا افیکٹ پڑا کہ 3 یونٹس میرے اپنے بند کرنے پڑے, جس سے بہت بڑا لاس ہوا اور جو پچھلا تھا وہ بھی چلا گیا.
عارفہ اب کام کو بحال کرنے کی جدوجہد میں جٹ گئی ہیں. مایوسی کی یہی فضا وادی کے بیشتر صنعتی مراکز پر طاری ہے. پلوامہ کے خنمو انڈسٹریل اسٹیٹ میں 500 سے زیادہ صنعتی یونٹ خاموش ہو گئے ہیں. کارخانوں میں مختلف اشیاء کی صنعت کا عمل ٹھپ پڑا ہے اور صنعتکار بے بسی کا شکار ہیں.
کچھ ایسے بھی فیکٹریز ہیں جن کو اپنے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اپنے لیبر کو کیا دیں گے؟ یہ ایک مطلب المیہ ہے ہمارے لیے. ہم انٹرسٹ پہ انٹرسٹ دیتے ہیں, ہم کام کچھ نہیں کرتے ہیں اس ٹائم, خالی اپنی لائبلٹیز جو ہے نا وہ بڑھا رہے ہیں اس ٹائم اور کچھ نہیں, سیل زیرو ہیں.
حکومت ہند کا موقف ہے کہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ترقی میں رکاوٹ تھی. اسی موقف کو تقویت دینے کے لیے اب پہلی مرتبہ کشمیر میں سرمایہ کاری کے بین الاقوامی میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے.
مقصد یہی ہے کہ اسٹیٹ کی یونین ٹیریٹری کی طرف انویسٹمنٹ کو راغب کرنا. ابھی تک اگر ہم دیکھیں انڈسٹریل سناریو کو دیکھیں, بہت زیادہ انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کو ان امپلائمنٹ کو ٹیکل کرنا ہے تو انڈسٹری کا آنا بہت ہی ضروری ہے.
یہ سب ایسے وقت ہو رہا ہے جب مقامی صنعت کار اور تاجر اخبارات کے ذریعے بینکوں سے منت سماجت کرتے ہیں کہ انہیں قرضوں کی بیک وقت ادائیگی کے لیے ہراساں نہ کیا جائے. تجارتی انجمن کشمیر چیمبر آف کامرس کی ایک سروے کے مطابق 500,000 افراد بے روزگار ہو گئے ہیں اور معیشت کو مجموعی طور پر 18,000 کروڑ روپے کے خسارے کا سامنا ہے.
پریکٹیکل بات یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹس ہیں پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ کیا مطلب مارکیٹ میں وہ بزنس سینٹیمنٹ ہے ہی نہیں. ایسی سچویشن میں جہاں آپ موسم نہیں چیک کر سکتے انٹرنیٹ پہ, آپ کوئی کسی سائٹ پہ نہیں جا سکتے, اتنی بیسک پرابلمز ہیں آپ کو, تو ایسی سچویشن میں کوئی ایکسپیکٹ کرنا کہ بزنس انویسٹر آ کے اپنا نیا پیسہ انویسٹ کرے, ہمیں تو نہیں دکھ رہا ابھی ویسی کوئی سچویشن.
ایسی پریشان کن صورتحال میں یہاں کے تاجر اور صنعت کار عالمی سرمایہ کاری میلے سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟
حکومت نے اگلے ماہ کشمیر میں عالمی سطح کا سرمایہ کاری میلہ لگانے کا فیصلہ لیا ہے, لیکن گزشتہ 6 ماہ کے دوران جو صورتحال یہاں پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں حالت یہ ہے کہ کشمیر میں 80% سے زیادہ صنعتی سرگرمیاں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں. ریاض مسرور, بی بی سی نیوز, سری نگر.
سربین میں آگے چل کر دیکھیے گا, ڈرونز ٹیکنالوجی میں بہتری شہد کی مکھیوں کی محتاج کیوں؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید, میں ہوں سمرا فاطمہ. تازہ پانی کی جھیلیں بھاری تعداد میں زہریلی گیسیں خارج کرتی ہیں, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قدرتی ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیسوں کے کل اخراج کا 1/4 حصہ